गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय और श्लोक संख्या 9 और तो श्लोक संख्या 9 है अने शत्रुशारद अनेक बहव सूरा जीवित शारद अनेक बहव सूरा जीवित नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारद अनेक बहव सूरा जीवित शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारण
युद्ध विशारदः
शास्त्र विद्या में निपुण। अनुवाद दोहराइए, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य सुनिए, श्री प्रभुपाद की जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृष्णवर्मा तथा शल्य का संबंध है, सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को ये बता रहे हैं कि और भी ऐसे कई शूर हैं। ऐसा नहीं कि पीछे हमने बता दिया कि वो सात महारथियों के नाम बताए या अन्य और योद्धाओं के बारे में बताया तो इन सबको समाप्त हो जाता है, बल्कि यहाँ दुर्योधन कह रहे हैं कि अन्य और भी बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं तो लाभ के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे योद्धाओं के होने से ये संकेत तो नहीं मिलता कि कौरवों की विजय होगी। बहुत सारे योद्धा है, आकाश में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का महत्व है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बात सुनो कि संख्या बहुत ज्यादा है इससे गुणवत्ता का नहीं पता चलता। तो ये कहेगा आप ये है कि अगर कहीं मात्रा ज्यादा है या संख्या ज्यादा है तो हम भ्रमित हो जाते हैं, ओ वहां तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बहुत कम लोग हैं। कई बार हमारे भक्त भी बोलते हैं उनके कार्यक्रम में तो बहुत भक्त आए हुए, भक्त नहीं मतलब बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हमने देखा पंडाल कार्यक्रम में वहाँ कथा हो रही थी, वहाँ 5 लाख लोग आए या 1 लाख लोग आए या 10,000 लोग आए कथा में थे। आपके कार्यक्रम में 100 लोग मुश्किल से बैठे हैं। तो इसलिए गुणवत्ता का महत्व है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ज्यादा श्रेष्ठ है या कम श्रेष्ठ है, लेकिन बात बता रही है कि गुणवत्ता का श्रेष्ठ है, क्वालिटी का महत्व होता है। तो इसलिए दुर्योधन का ये कहना है कि हमारे पास और भी बहुत सारे योद्धा है, तो ये कोई बात संकेत नहीं दे रहा है कि कौरवों की विजय होगी। और आगे नाना शस्त्र प्रणा का मतलब है ये भी अनेकों शस्त्रों को धारण किए हुए हैं, अनेकों शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। तो इससे भी संकेत नहीं मिलता है कि कौरवों की विजय होगी। अनेकों शस्त्र तो पांडवों के पास भी, अनेक शस्त्र तो पांडवों के पास भी है, तो इससे भी कोई संकेत नहीं मिलता है कि विजय जो है वो कौरवों की होगी। और आगे क्या बता रहे हैं, सर्वे युद्ध विशाल रहा, अर्थात ये सभी योद्धा युद्ध करने में भी निपुण हैं। तो हमें जैसे पहले बताया कि पिछले श्लोक में दुर्योधन ने 7 महारथियों का नाम दिया, 7 महारथियों का नाम दिया था। और फिर साथ में दुर्योधन कह रहे हैं कि मेरी सेना में और भी अनेक बहुत से शूर हैं। शूर का मतलब क्या होता है? शूर वो क्षत्रिय जो हमेशा युद्ध में उत्साह बनाए रखते हैं, शूर वीर जिसको कहते हैं, युद्ध के लिए हमेशा उत्साहित है। विजय हो या ना हो अलग बात है, लेकिन युद्ध में उत्साह हमेशा रहता है। जैसे भीम का उत्साह हमेशा बना रहा है। देखा कि किसी बार में चर्चा की थी कि भीम का शुरू से उत्साह है, जब वो अज्ञातवास में थे तब से उत्साह है भीम का। भीम या युद्ध करना चाहते हैं, दुर्योधन को मारना चाहते हैं, तो ये सब शूरवीर हैं, हमेशा जो है युद्ध के लिए तैयार। ये क्षत्रिय का गुण है। तो और भगवान ने जो है भगवद गीता में 18वें अध्याय के
43वें श्लोक में
अगर आप देखेंगे भगवद गीता में, हाँ 1843 में देखिए, वहां पर क्षत्रिय के गुण बताए भगवान ने। तो हमें पता होना चाहिए कि क्षत्रिय कर्म स्वभाव, क्षत्रिय का गुण क्या है, क्षत्रियों के गुण क्या हो, आज जो क्षत्रिय जो दिखाई पड़ रहे हैं उनमें क्या ये गुण है, भगवद गीता के आधार पर हमें समझना है ना। वर्णा वर्ण के का जो विभाजन किया है भगवान ने ये गुणों के आधार पर है, ऐसे नहीं कि मतलब वैसे विभाजन कर दिया ना उनके लिए, नहीं, ये गुणों के आधार पर विभाजन हुआ है। और जिसके बाद ये गुण है क्षत्रिय के, वो क्षत्रिय है। यहाँ क्या बताया, तो ये पांच गुण बताए यहाँ पर क्षत्रिय के। शौर्य, शौर्य का मतलब होता है कि जो युद्ध में उत्साह रखता है उसको शौर्य है। आपने नाम सुना हो हरी शौरी, भगवान को शौरी बोला जाता है। और उसके बाद तेजहा, तेजहा का मतलब होता है कि युद्ध भूमि में, क्योंकि यहाँ पर युद्ध से संबंधित है तो हम युद्ध से तो संबंध जोड़ रहे हैं, युद्ध में अपनी शक्ति प्रकट करता है तेजहा। और उसके बाद तीसरा बताया यहाँ पर है धृति, युद्धि का मतलब होता है युद्ध करने का संकल्प करता रहता है, युद्ध करने का संकल्प करता है, कहते हैं धृति। और चौथा है दक्षम, युद्ध करने में निपुण होने का प्रयास, विशारदा जैसे बोला थे सर्वे युद्ध विशारदा, जैसे आया श्लोक में, तो दक्षम का भी यही अर्थ है कि युद्ध में दक्षम यानी निपुणता है, युद्ध करने की निपुणता है। और पांचवा बता रहे हैं कि युद्ध में धैर्य धारण करता है, अर्थात युद्ध से भागने की इच्छा नहीं करता, अपलायनम यानी कि वो युद्ध छोड़कर भागता नहीं। आजकल की दुर्दशा है कि युद्ध में जाते ही नहीं, ये तो कहते हैं युद्ध में जाके भाग रहे हैं, फिर भी ये सही है, युद्ध में जब गए लेकिन डर के वापस आ गए। लेकिन आजकल के जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध में जाते ही नहीं है, बताइए कौन सा अच्छा होता है, युद्ध में जाके वापस आना अच्छा है, लेकिन युद्ध में जाना ही नहीं, ये तो ये भी क्षत्रिय का लक्षण ही नहीं है। तो हाँ वो फिर देते हैं अपने सैनिकों को और याद जाओ लड़ो। तो इस प्रकार ये जो दुर्योधन है ये बताना चाह रहा, उसके बाद अनेकों वीर हैं, लेकिन क्या है अनेकों वीर क्या कर रहे हैं, मदर थे ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए। आज के श्लोक में हम लोग इसी पर ज्यादा जोर देंगे, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे भगवद गीता में भी भगवान ने मद अर्थम शब्द का प्रयोग किया है, गीता के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मद अर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यति, यानी कि मेरी प्रसन्नता के लिए भी कर्म करता हुआ तू जो है सफलता को प्राप्त करे। अगर आप मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। सफलता का मतलब क्या है, सफलता का मतलब है कि आप जन्म मृत्यु से आपको छुटकारा प्राप्त होगा, सफलता ही सफलता है। ये सफलता होना है कि भाई आप मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो आपको धन मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको मकान मिल जाएगा, आपको खाड़ी मिल जाएगी, आपको अमेरिका का वीजा मिल जाएगा। ये जो है लालच नहीं दे रहे भगवान, भगवान कह रहे हैं कि अगर आप मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करें, मद अर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यति, सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, क्या सिद्धि प्राप्त होगी, क्या सफलता प्राप्त होगी कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से जो है छुटकारा पाएंगे, ये सफलता है, अपनी सफलता है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, अशुभ लोग हैं, वो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। भगवान बनना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है कि वो चाहते हैं कि उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, है ना। और इसलिए ऐसे दुष्टों का संहार करने के लिए जो है भगवान अवतरित होते हैं इस पृथ्वी में, ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಾಧುನಾಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಹುಗೇ. ಸೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಸಾಧನಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಔರ್ ಐಸೆ ದುಷ್ಟೋ ಕಾ ವಿನಾಶ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ಜೊ ಹೈ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ತೇ ಹೈ. ಔರ್ ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ ಗೀತಾ ಕೆ 16ವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆ 15ವೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಭಿ ಹಮ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಅಸುರ ಕೆ ಗುಣ ಬತಾಯೆ ಹೈ. ಅಗರ್ ಆಪ್ ವೋ ದೇಖೇ 16ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇಖೇ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಕಾ, ತೋ ಕೇವಲ ಏಕ ಹೀ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಜೊ ದೇವತಾ ಕೆ ಗುಣ ಬತಾಯೆ, ಯಾನಿ ಕಿ ಜೊ ಜಿನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ದೇವತಾ ಜೈಸೆ ಗುಣ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕೀ ಹೈ ಏಕ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಸಿರ್ಫ. ಲೇಕಿನ್ ಜಹಾಂ ಸೆ ಅಸುರ ಕೆ ಅಸುರೋ ಕೆ ಗುಣ ಕಿ ಬಾತ್ ಕೀ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಕೈ ಶ್ಲೋಕೋ ಮೇ ಉನ್ಕಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕೀ ಹೈ. ಅಸುರ ಐಸೆ ಹೋತೆ ಹೈ, ವೈಸೆ ಹೋತೆ ಹೈ, ಐಸೆ ಹೋತೆ ಹೈ, ಪೂರಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಇಸ್ಸೆ ಕ್ಯಾ ತಬ ಪತಾ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಇಸ್ ಪ್ರಿಥ್ವಿ ಮೇ ಭಿ ಅಸುರೋ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯಾದಾ ಹೈ ಶುರುವೋ ಸೆ. ಅಸುರೋ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯಾದಾ ತೋ ಯೇ ಪಹಚಾನಾ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಕಿ ಅಸುರ ಕೌನ್ ಹೋತೆ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬತಾ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಅಸುರ ಕೌನ್ ಹೋತೆ ಹೈ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕ್ಯಾ ಬತಾ ರಹೇ ಹೈ, ಏಕ್ ಬತಾ ರಹೇ ಬಾತ್ ಕ್ಯಾ ಬತಾ ರಹೇ ಹೈ. ಮೈ ಸಬ್ಸೆ ಧನೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂಂ ಔರ್ ಮೇರಿ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಮೇರಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಸೆ ಲೋಗ್ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ಮೇರೆ ಸವಾಲ ಅನ್ಯ ಕೌನ್ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಲೋಗ್ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಮೈ ಬಹುತ್ ಧನೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂಂ, ಬಹುತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂಂ, ಮೈ ಬಹುತ್ ಸುಖಿ ಹೂಂ, ಮೈ ಬಹುತ್ ಬಲವಾನ್ ಹೂಂ, ಮೇರಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಬ್ ಲಗೇ ಹುವೆ ಹೈ. ಕಿತ್ನಿ ಬಡಿ ಸೇನಾ ಹೈ ಮೇರೆ ಪಾಸ್, ಕಿತ್ನಿ ಬಡಿ ಪ್ರಜಾ ಹೈ, ಕಿತ್ನೆ ಸಾರೇ ಜೊ ಹೈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೈ ಮೇರೆ, ನೌಕರ ಚಾಕರ ಹೈ, ಈ ಸಬ್ ಮೇರಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಅಸುರ ಕೆ ಗುಣ ಹೈ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಫಿರ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಭಿ ಯೇ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಸಮಝಾಯ ಗಯಾ ಹೈ. ದೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಲೋಗ್ ಹೋತೆ ಸಮಾಜ, ಶೋಷಣ ಕರ್ನೆ ವಾಲೇ ಔರ್ ಶೋಷಿತ, ಶೋಷಣ ಕರ್ನೆ ವಾಲೇ ಔರ್ ಶೋಷಿತ. ಶೋಷಣ ಕರ್ನೆ ವಾಲೇ ಕೌನ್ ಹೈ? ದುರ್ಯೋಧನ ಜೈಸೆ ಲೋಗ್. ಔರ್ ಶೋಷಿತ ಕರ್ನೆ ವಾಲೇ ಲೋಗ್ ಕೌನ್ ಹೈ? ಅರ್ಜುನ್ ಜೈಸೆ ಲೋಗ್. ಅರ್ಜುನ್ ಜೈಸೆ ಲೋಗ್ ಶೋಷಿತ ಹೋತೆ ಹೈ ಔರ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಜೈಸೆ ಲೋಗ್ ಶೋಷಿತ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಸಮಾಜ ಮೇ ಇಸಿ ತರಹ ಕೆ ಲೋಗ್ ಪಾಯೆ ಜಾತೆ ಹೈ. ಪೂರಾ ಸಮಾಜ ಆಜ ಅಗರ ಆಪ್ ಜಾಯೆ ಆಫೀಸ್ ಮೇ ಜಾಯೆ, ಕೋಈ ಜಾಬ್ ಮೇ ಜಾತೆ ಹೈ, ಅಬ್ ಇಸಿ ಕಿತ್ನೆ ಲೋಗ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ಜಾಬ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಆಜ ತರಹ ಹೈ. ಸಾಫ್ ಸಬ್ ಕೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಅನುಭವ ಹೋಗಾ, ರೋಜ್ ಯೇ ವಿಸಿಟ್ ಸೋ ಹೋಗಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನ ಆಪ್ಕೋ ಅನುಭವ ಹೋತಾ ಹೋಗಾ ಕಿ ದೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಲೋಗ್ ಆಪ್ ಅಪ್ನೆ ಆಫೀಸ್ ಮೇ ಕರ್ತೆ ಹೋಗಾ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ? ಕೋಈ ನಾ ಕೋಈ ಕಿಸಿ ಕಾ ಶೋಷಣ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ, ಶೋಷಿತ ಲೋಗ್ ಹೈ ಔರ್ ಶೋಷಣ ಕರ್ನೆ ವಾಲೇ ಲೋಗ್ ಹೈ. ಸಮಾಜ ಮೇ ದೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಲೋಗ್ ಹೈ, ತೋ ಕೋಈ ನಾ ಕೋಈ ಕಿಸಿ ನಾ ಕಿಸಿ ಕಾ ಶೋಷಣ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ. ಯೇ ನಾ ಸೋಚೆ ಕಿ ಫಿರ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇ ಶೋಷಣ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಆಜ ತಕ್ ಮರೀಜೋ ಕಾ ಭಿ ಶೋಷಣ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಉನ್ಕೋ ಪತಾ ಹೈ, ಪತಾ ನಹೀ ಜಿಸ್ಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಸ್ಕೋ ಪತಾ ಹೀ ನಹೀ ಚಲ್ತಾ ಹೈ, ಬುರಾ ನಾ ಮಾನೇ ಯಹಾಂ ಪೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇ ಆಜ ಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ವೋ ಸಬ್ ಮಶೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೈ. ಜಾನ್ತೇ ಮಶೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಜೈಸೆ ಮಶೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೇಗಾ ಕ್ಯಾಸೆ ಕಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹೈ, ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಹೈ, ಇಸ್ ತರಹ ಕಿ ಕೈ ಮಶೀನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹೈ ಆಜ ಕಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಮಶೀನ್ಸ್. ಸೊ ಆಜ ಜೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೈ ವೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಶೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೈ. ಮಶೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಮತಲಬ್ ಮಶೀನ್ ಕೆ ಆಧಾರ ಪರ್ ಜೊ ಹೈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಕೈ ಐಸೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಗಲತ್ ನಿಕಲ್ ರಹೇ ಹೈ. ಔರ್ ಜೊ ಮರೀಜ್ ಹೈ ವೋ ದವಾಯಿ ಖಾತಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ, ಕಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೋ ಬಿಮಾರಿ ಹೈ ನಹೀ ಉಸ್ಕೋ, ಖಾತಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಕೈ ಸಾಲೋ ಸೇ, ಔರ್ ಖಾತೇ ಖಾತೇ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಜೊ ಉಸ್ಕಿ ಅಸಲಿ ಬಿಮಾರಿ ತೋ ಠೀಕ್ ನಹೀ ಹುಯೀ ಔರ್ ನಯೀ ಬಿಮಾರಿ ಭೀ ಶುರು ಹೋ ಗಯೀ. ಸೊ ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ ಕೈ ಬಿಮಾರಿಯಾಂ ಲಗ್ ಗಯೀ ಔರ್ ಐಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ವೋ ಹಮೇಶಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬನ್ ಗಯಾ. ಸೊ ಲೋಗ್ ಪಹಲೇ ಕೆ ಜಮಾನೇ ಮೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ದೇಖ್ತೆ ಥೇ, ಲೇಕಿನ್ ಆಜ ಕಲ್ ಕುಛ್ ಔರ್ ಹೀ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಸರ್ ಯೇ ಬಡಾ ಅಚ್ಛಾ ಮೇ ಶುಕ್ಲಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ, ಇಸ್ಸೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಹೀ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಪತಾ ನಹೀ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಹಾಲತ್ ಹೈ ಕಿ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ನಿಲಾಮಿ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕಾ ಟಿವಿ ಫ್ರಿಜ್ ಜೊ ಹೈ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಬಿಕ್ ರಹಾ ಹೈ, ಸಮಾನ್ ಸಬ್ ಬಿಕ್ ಗಯಾ, ಸೋಫಾ ಭೀ ಬಿಕ್ ಗಯಾ, ಸಬ್ ಬಿಕ್ ಗಯಾ, ವೋ ಬೇಚಾರಾ ಸಡಕ್ ಪೇ ಖಡಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಸೊ ಅಚಾನಕ್ ಉಸ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತೆ ಹೈ, ಬೋಲೇ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಠೀಕ್ ಹೈ? ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಠೀಕ್ ಹೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್, ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ ಸಂತ ಹೈ, ಆಪ್ಕಿ ಕೃಪಾ ಸೆ ಆಜ ಮಾಯಾ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಗಯಾ. ಅರೆ ಕ್ಯೂ ಕಿ ಹಾತ್ ಮೇ ದವಾಯಿಯೋ ಕಾ ಲಂಬಾ ಚೌಡಾ ಬಿಲ್ ಹೈ, ಕೈ ಸಾಲ ದವಾಯಿ ಖಾ ರಹೇ ಹೈ, ಇಲಾಜ್ ಹೋ ನಹೀ ಪಾಯಾ, ದವಾಯಿ ಕಾ ಬಿಲ್ ದೇತೆ ದೇತೆ ಹೈ, ಘರ್ ಕಾ ಸಾರಾ ಸಮಾನ್ ಬಿಕ್ ಗಯಾ, ನಿಲಾಮಿ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ, ಸಂತ ಹೈ ಆಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್, ಮಾಯಾ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಕರ್ ಗಯಾ. तो कह रहे करते हैं कि यह हालत है समाज की कि कैसे कोई किसी का शोषण करना छोड़ ही नहीं सकते. हमें लगता है ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये डॉक्टर हैं, ये लॉयर हैं, ये एजुकेशनिस्ट हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये टीचर्स हैं, कितना अच्छा पढ़ाते होंगे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता कौन किसी का शोषण कर रहा है कि नहीं. क्योंकि आजकल सब कुछ प्राइवेटाइजेशन जो हुआ जा रही है, जो कहते हैं कि इसको आजकल की जो मॉडल जो सेटअप है वो इस तरह से हो गया है कि धन ही केंद्र बिंदु है। जैसे यहाँ पर लिखा है असल लोगों लक्षण क्या बताया कि मेरे पास बहुत धन है, तो धन को केंद्र बिंदु बनाते हुए किसी को भी शोषण करना पड़े तो उसके लिए तैयार होना पड़ता है। और जो कमजोर लोग हैं, जिनके पास धन कम है, जिनके पास गुण कम है, जिनके पास क्षमता कम है, जिनके पास योग्यता कम है, वो सब क्या है? शोषित लोग हैं। तो हमें अपने आप को परखना है कि हम शोषित हैं या शोषण करने वाले हैं। हम सब वास्तव में देखा जाए कोई शोषण करने वाला नहीं है और कोई शोषित नहीं है। वास्तव में देखा जाए सबके साथ जो है माया के द्वारा शोषित। ये सही भ्रम है कि हम किसी को शोषण कर रहे हैं, ये भ्रम है कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए प्रकृति सबका शोषण कर रही है और भरपूर भारी मात्रा में शोषण कर रही है, इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि दो प्रकार के लोग हैं, शोषित और शोषित होने वाले। आगे इसी प्रथम अध्याय में ही 32वें श्लोक में आप देखेंगे ये शाम अर्थे का शब्द का ये शाम अर्थे बोला आपने, इसका अर्थ ये है अर्जुन की भावना ये शाम अर्थे जब बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वास्तव में देखा जाए तो हमें सबके लिए हमें सबको त्याग करना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि हम लोग इन्हीं को मारना चाह रहे हैं, इनसे राज्य छीनना चाह रहे हैं। हमें तो चाहिए था कि हम इन सब कुछ इनको दे दें, हम इसे लेने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? ये सब भी तो अपना जो है राज्य छोड़कर, घर परिवार छोड़कर यहाँ पर सामने खड़े हैं, तो क्यों हम इसे युद्ध करना चाह रहे हैं, हम इसको क्यों नहीं देते सब कुछ, ऐसा आदमी विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बात आई गई है। और लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जब ऐसा विचार होता है कि क्यों हम लोग इससे युद्ध करें, क्या होता है, सब इनको दे दें। जैसे प्रभुपाद एक बड़ा सा उदाहरण देते हैं कि बहुत धनी व्यक्ति जो है वो वृंदावन धाम चलाए, वृंदावन में उसने घर खरीद लिया, घर नहीं वहां जाकर वो विशाखन करने लगा और अपना भजन करने लगा। लेकिन किया क्या उसने, उसने जो है धन भगवान की सेवा में लगाया, धन बहुत था, उसने घर परिवार रिश्तेदारों में मित्रों को सबको दे दिया धन और उसे बोला मैं जा रहा वृंदावन धाम में भजन। प्रभुपाद कहते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रमोशन नहीं है, ये फल्गु वैराग्य है। फल्गु फल्गु युक्त वैराग्य ये है कि उस धन को भगवान की सेवा में लगा दिया, घर परिवार को थोड़ा बहुत देने का आपातकालीन स्थिति के लिए ठीक है, लेकिन सारा का सारा धन जो है वो संभाल में ही दे दिया उसने और भगवान की सेवा में कुछ भी नहीं लगाया। प्रभुपाद कहते हैं फल्गु वैराग्य है, युक्त वैराग्य होना चाहिए, भगवान की सेवा में उसको धन लगाकर फिर वो अपना भजन करता तो कोई सब मायने होता है। तो इसी तरह से अर्जुन बोल रहे हैं कि परिवार को दे देना चाहिए था या इनको दे देना चाहिए, कौरवों को देना चाहिए। तो ये याद रखना है कि दूसरों की सेवा करने से हमें कभी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे दुर्योधन जैसे लोगों की सेवा करके हम सोचे बिल्कुल वैसे ही है कि शाम को जो है दूध पिला रहे हैं और शाम आपको क्या देगा, जहर ही देगा, है कि नहीं? तो इस तरह से दुर्योधन जैसे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे या उसकी दृष्टि के लिए हम कार्य करेंगे तो कभी हमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए हमेशा शांति नहीं रहेगी। और आगे जो है आप देखते हैं 10वें अध्याय में भी 9वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया, मत चित्त मत रथ प्राणा बोधयंता परस्पर। भगवान बोल रहे हैं कि अपना जीवन अपना चित्त आप मुझे समर्पित करें, इंद्रियों को नहीं, समाज को नहीं, बल्कि भगवान कह रहे हैं मत चित्ता मत प्राण बोधयंता परस्पर, मेरे चित्त और मेरे जीवन को, यानी कि अपने जीवन को मेरी प्रसन्नता में लगा। ये भगवान बता रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। और उसके बाद आगे ये बताया गया है श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल देव ने ऐसी बात बताई है। क्या बताया भगवान कपिल देव ने, मद अर्थे त्यक्त कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवा, यानी कि अपने कर्मों को अर्थात भोगों को भी त्याग देना चाहिए। हम लोग त्याग देते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न, अपने सज्जनों को भी त्याग देते हैं, अपने मित्रों को भी त्याग देते हैं भगवान बता रहे मेरी प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई बातें बताई गई हैं, और साथ में यहाँ पर बताया गया है दूसरी बात यह है, प्रश्न उठ सकता है, कोई पूछ सकता है कि भाई भगवान की सेवा में सब कुछ क्यों लगाना है, हम अपने परिवार की सेवा में लगाएंगे, समाज की सेवा में लगाएंगे, जो उनसे दिख रहे हैं जो हमारे साथ रह गए, जिनके लिए हम लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हो, उनके लिए ना करके हम ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों करें जो दिखाई दे रहे ना बातचीत कर रहे हैं, सोचिए देखिए आप, कोई विचार कर सकता है। अब जगन्नाथ जी बैठे यहाँ पर, चलो अच्छे विग्रह के रूप में देखा, लेकिन वैसे कहा देखा हमने, बातचीत तो करते नहीं वो, ना उनको कोई बोलचाल है, ना हमें हमारे बारे में पूछ रहे हैं, हम ही उनके बारे में पूछते जा रहे हैं या प्रार्थना करते जा रहे हैं, तो हम के इनके लिए क्यों करें, क्यों बनाए इनके लिए मंदिर गुड़गांव में, हमें अपना घर बनाना चाहिए, अपना हम लोग फैक्ट्री खोले हैं, क्या जरूरत है यहाँ पे धन लगाए, प्रश्न सकता है और प्रश्न अधिकांश हमारे मन में विचार आता है। तो भगवान बता रहे हैं और गीता में शास्त्र अध्याय के 9वें श्लोक में, जीवनम सर्वभूते को, समस्त प्राणियों का जीवन श्री कृष्ण पर आधारित है, यानी कि भगवान कृष्ण की सेवा करने से बाकी सबकी सेवा हो जाती है, जड़ में पानी डालने से शाखाएं तृप्त हो जाती हैं, जड़ में आप पानी डालते हैं कि नहीं, ये उदाहरण बहुत सटीक उदाहरण है कि जड़ में ही पानी डालते हैं आप, लेकिन कई बार लोग सोचते नहीं पत्तों में पानी डालना चाहिए, पत्ते सूख जाएंगे, शाखाओं में पानी डालना चाहिए, आवश्यकता नहीं है, जड़ में ही पानी डालना होता है, जैसे भोजन जो है प्रसाद जो है पेट में डालते हैं, आंखों में नहीं, कान में नहीं, इंद्रिया अपने आप तक हो जाती है, इंद्रियों का पोषण अपने आप हो जाता है जड़ में रूट में। तो इसी तरह से पूरे सृष्टि के मूल कारण जो है भगवान श्री कृष्ण, आदि कारण, रूट कॉज ऑफ ऑल कॉज, तो उनकी जब सेवा करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, हम सभी कर्जे से जो है छुटकारा पाते, जितना भी कर्जा है हमारा वो सबसे मुक्त हो जाते हैं। तो यहां पर एक बात बताई गई है कि ये इंद्रियां, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि माया जो है कई तरह से रूप धारण करती है, वास्तव में ये शरीर भी तो माया से ही उत्पत्ति है, और इस शरीर में जो इंद्रियां उसे मुक्त करने के लिए ही हम दिन रात परिश्रम करते हैं, और अगर इस भावना से मुक्त हो जाते हैं तो फिर ये स्वास्थ्य जो है हमारा और विस्तार हो जाता है, इसका अपने परिवार के सदस्यों में, समाज या फिर देश, जो देश की सेवा कर रहे हैं बोले हम मेरा भारत महान है, हम स्वदेशी हैं, हम ये हैं, तो ये भी सब स्थिति है, ये भी जो है माया का ही प्रभाव है, कोई देश की सेवा करना चाह रहे, राष्ट्र की सेवा करेंगे हम लोग, समाज की सेवा करेंगे, समाज सेवक बन जाएंगे, तो इस प्रकार भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब क्या है, वास्तव विस्तृत एक्सपैंडेड सेल्फिश प्रॉपर्टी, एक्सटेंडेड सेल्फिश प्रॉपर्टी, तो ये स्वार्थ का विस्तार ही है, तो इससे कोई विशेष लाभ मिलेगा नहीं, इसलिए बताया कि जड़ में पानी डालना बहुत जरूरी है। जब जो वास्तव में एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, आजकल जो डॉक्टर जैसे आज के डॉक्टर का क्या है, वो लक्षण ज्यादा देखते हैं, सिम्टम देखते हैं, है कि नहीं, कि सिम्टम क्या है बताइए, आप बताइए कि आपकी दिक्कत क्या, आपकी समस्या क्या, भाई डॉक्टर आप हैं, मैं हूँ, आप बताओ, मैं मरीज हूँ, आप डॉक्टर हैं, मैं अनपढ़ हूँ, आप शिक्षक हैं, आप टीचर हैं, आप मुझे बताइए कि असुविधा होता है, आप मुझसे दूसरों की असुविधा होता है, आप पहले पढ़ाइए फिर मैं बताऊंगा आपको, आपने पढ़ाया नहीं और मैं पहले दिन यहाँ पर आया हूँ आपके स्कूल में, और आप मुझसे टूटना असुविधा होता है बताइए, मैं किसको बताऊँ, मैं मरीज हूँ और डॉक्टर आप हैं, आप मुझसे पूछ रहे मेरी बीमारी क्या है, मैं किसको बताऊँ, लक्षण लक्षण बताइए, ठीक है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, आंखों में दर्द है, क्या है, तो इस प्रकार लक्षण पूछते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो डॉक्टर होते हैं आयुर्वेद जो बेस्ट है हमारा, आयुर्वेद में कारण ढूंढ जाता है, जड़ पकड़ा जाता है कि ये बीमारी किस कारण से, होम्योपैथिक में भी ऐसे ही, कि होम्योपैथी का बेस ही आयुर्वेद ही है, फिर मेडिसिन जो है बायोकेमिकल होते हैं, तो आयुर्वेदिक में जो डॉक्टर हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं, नाड़ी वैद्य जो कहते हैं, वो देख के बता देते नाड़ी को कि बीमारी किस कारण से हुई। तो कारण के ऊपर जो है कारण का निवारण किया जाए, कारण के ऊपर जो है इलाज किया जाए। जैसे ही कारण ठीक हो जाता है सारे लक्षण अपने आप कम हो जाते, जितने भी लक्षण जो पैदा हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वो सारे लक्षण समाप्त हो जाते हैं जस्ट कारण को ठीक करने माध्यम से। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने गाड़ी में टेंटिंग पेंटिंग किया, सब कुछ कर दिया, शीशा भी बदल दिया, साफ कर दिया सब, लेकिन आप इंजन का ध्यान रखना भूल गए, इंजन का ध्यान नहीं रखा। तो जैसे आप इंजन को ठीक करिए बाकी आपने आप बड़े आसानी से ठीक हो जाए। तो इसलिए रूट पे जाना बहुत जरूरी है। इसे जब इवन जो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, जब वो पेशेंट से मिलते हैं तो उनकी हिस्ट्री में जाते हैं और उसे पूछने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण था कि इसको जो है सदमा हुआ। पेशेंट जो पूछते जाते हैं, पूछते एक ही बात को बार बार पूछते हैं। तो इस तरह से रूट पर जाना बहुत जरूरी है। देखिए बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पूरी इमारत उसका फाउंडेशन रूट। एक वृक्ष में जो बैगन ट्री है या अश्वत्थ वृक्ष उसको कहते हैं, वट वृक्ष, उसका जो उसके उसका जो स्ट्रेंथ कहां पर है रूट में कि जड़े। अब जड़े काट दीजिए पेड़ अपने आप जाए, कितना भी बड़ा सा बड़ा पेड़ हो अगर उसकी जड़ काट देंगे उसी समय गिर जाएगा पेड़। तो इसी तरह से जो है पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के जो रूट कॉज है वो भगवान के, जैसे मोती की जो हार है भगवान गीता में बता रहे हैं, मोतियों का जो हार है वो मोतियों का हार जो किस पे टिका है, धागे पे टिका है कि नहीं। इसी तरह से सृष्टि जो है आध्यात्मिक हो या भौतिक जगत, इस सृष्टि का आधार जो है भगवान के रूप कौन। तो इसलिए यह बता रहे हैं कि उनको जब प्रसन्न किया जाता है तो फिर हम सभी समस्याओं से छुटता रहा। और आगे ये बताया गया है मन अर्थ त्यक्त जीवता। तो दुर्योधन जो है इंद्रियों के सेवक है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो दुर्योधन के समान है उनकी जब सेवा करेंगे तो उस समय कभी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्वयं वो भी इंद्रियों का सेवक है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जड़ में पानी डालें। और यहां पर एक बात और बताई गई है कि जब हम अपनी बात करते हैं भक्त के रूप में बात करते हैं तो हम सबको भी क्या है भगवद गीता का देखिए सबसे बड़ा एक उद्देश्य है। भगवदगीता का विषय वस्तु ये भी है कि कैसे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना और इंद्रशक्ति की भावना को त्याग। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें अपनी सेवा में लगाइए, हमें विश्व महामंत्र का जप करते हुए प्रत्येक दिन हम यही प्रार्थना करते हैं ना, हमें आप अपनी सेवा में लगाइए हे जगन्नाथ हे कृष्ण। लेकिन ऐसा तो हम नहीं बात हम क्या करते हैं, ठीक है आपके भक्त जो है उनकी सेवा हम करते हैं। अगर एक भक्त की सेवा से नहीं होता है तो ठीक है भक्त की सेवा करें, जो भक्त के भक्त हैं उनकी सेवा करें, या फिर उनके सेवक के सेवक के सेवक हैं उनकी सेवा करें, या फिर उनके भी सेवक के सेवक के सेवक हैं उनकी उनके जो सेवक हैं उनकी सेवा करें। ऐसे अनेकों सेवक अनेक सेवक जो है सौ सैकड़ों सेवक की हम सेवा करें। तो कहने का तात्पर्य यह क्या ये है कि अगर हमें सीधे भगवान की सेवा नहीं भी प्राप्त हो, अगर हमें कई सेवकों की सेवा भी करनी पड़े तब भी हमें माया की सेवा में नहीं जाना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर ये बात बताई गई है। देखिए यहां पर प्रभुपाद जी भी ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर बता रहे कुरुक्षेत्र में सारे जो योद्धा हैं कौरवों की सेना में सब मारे जाएंगे, है ना। और तो और श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर दुर्योधन को अपनी सेना की शक्ति में जितना विश्वास था उतना विश्वास श्री कृष्ण की सहायता में नहीं था। जैसे अब द्वारका गए और द्वारका में जो है अर्जुन को जब मौका दिया भगवान ने ये कहकर देखिए अर्जुन को सबसे पहले मैंने अर्जुन को देखा तो उस चरणों के सामने खड़े थे, दुर्योधन जो है सर के पास आगे खड़ा हो गया। तो भगवान जानते हैं दुर्योधन पहले आया है, लेकिन आंखें बंद की हुई थी उन्होंने, और जैसे आंखें खोली और मुझे तो अर्जुन ही नजर आया, वो तो सामने खड़ा है, इसे अर्जुन घर से पहले पूछेगा। तो अर्जुन ने कहा कि अर्जुन से कह दिया लेकिन भगवान ने कि युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, काटा करूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी ओर मेरी रामायणी सेना है, पता क्या थी तुम्हें? अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल आपकी आवश्यकता, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं थी। तो फिर दुर्योधन ने कहा बेवकूफ है, उन्होंने कहा मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ नारायणी सेना मिल गई, मुझे और कुछ नहीं थी। क्योंकि अब उसको लगा कि नारायणी सेना जो है उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करे, और कृष्ण जो निहत्ते रहेंगे बिना शस्त्र के रहेंगे वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात को मैं समझना है, इसका बात अर्थ ये है, दुर्योधन ये भूल रहा है कि शक्ति को शक्तिमान से कभी अलग नहीं किया जा सकता, शक्ति को शक्तिमान से कभी अलग नहीं किया जा सकता। नारायणी सेना भगवान की शक्ति है, और उसको भगवान से कैसे अलग किया जा सकता है? जिस तरह से सीता जी को रावण ने ये सोच के सीता जी को लेके अपहरण कर लिया, लेकिन शक्ति का वो स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, वो शक्ति तो भगवान की है कि नहीं? तो इसी तरह से भूल गया दुर्योधन कि नारायण सेना को मैं लेके तो जा रहा हूं लेकिन मुझे इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसी तरह से लक्ष्मी का भी उपयोग जो है भगवान की सेवा में होना चाहिए, जहां अपनी सेवा में लगाएंगे तो इसका मतलब उस लक्ष्मी को हम शक्तिमान से अलग कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और फिर वो लक्ष्मी जो है माया का कार्य कर। तो इस तरह से जो है दुर्योधन जो है वो नहीं समझ पा रहा था, और दुर्बुद्धि होने के कारण, दुष्ट होने के कारण जो है वो माया के प्रभाव में था, और इस तरह से जो है वो पराजित हुआ। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई हैं इस प्रसंग में, कि हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना है कि हम सोचें कि कोई हमारी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, ये व्यक्ति हमारे साथ है या ये लोग हमारे साथ होंगे तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जो है केवल माया का ही प्रभाव, माया का प्रभाव है, कोई किसी के साथ है नहीं संसार में। ये केवल एक भ्रम है कि परिवार हमारे साथ है, ये मित्र हमारे साथ है, ये समाज हमारे साथ है, ये कंपनी वाले हमारे साथ है, ये एम्प्लॉइज हमारे साथ में है, ये देश हमारे साथ में है, हम भारतवासी हैं या अमेरिका जाके सेटल हो जाएंगे, वो देश हमारी रक्षा करेगा, ये सब का सब जो है भ्रम है। क्यों क्यों भ्रम है? अब बोलेंगे तो आप भाव, ये भावुकता की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। जब आपका शरीर ही आपके साथ नहीं रहेगा तो फिर कोई वस्तु और कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं, ये तो समझने वाली बात। फिर कोई बोल सकता है नहीं नहीं ये तो जीवन के अंत काल में सब होगा, अभी से आप इसकी क्यों चिंता करते हैं, अभी से आप इसकी बातें क्यों कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, अभी तो हम लोग स्वस्थ हैं, सब कुछ सही है, लेकिन क्या कोई गारंटी है कि हम इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे? किसी भी समय छोड़ सकते हैं शरीर को। प्रभुपाद जब वैष्णव में गए तो उनसे पूछा कि आपने युवकों को संन्यास दे दिया है छोटी उम्र में, ये सब ठीक नहीं है, है ना? तो प्रभु इस बुढ़ापे में होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि बताइए अच्छा वृद्धावस्था की परिभाषा क्या, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज? तो रिपोर्टर ने कहा ओल्ड एज मींस वन विद नियर डेथ, तो मृत्यु के निकट है। तो प्रभुपाद ने कहा क्या गारंटी है कि आप मृत्यु के निकट नहीं हो, क्या गारंटी कि आप मुझसे पहले नहीं शरीर छोड़ोगे? हाँ ये बात तो सही है। तो इस तरह जो है ये केवल भ्रम है, हम सोचते हैं कि हम लोग कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे। जैसे यक्ष ने जब पूछा युधिष्ठिर महाराज से, उन्होंने कहा कि बताइए संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? युधिष्ठिर महाराज ने क्या उत्तर दिया? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इतने सारे लोग जो है यमराज जी पास जा रहे हैं, यमपुरी जा रहे हैं, लेकिन शेष लोग जो यहाँ पृथ्वी में हैं वो सब सोच रहे हैं कि हम यही रहने वाले हैं, वो यही रहने की इच्छा कर रहे हैं, यहाँ पर रहकर वो अब प्लानिंग कर रहे हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम बना रहे हैं, कई वर्षों के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उनके सामने जो है कई लोग शरीर छोड़ के जा रहे हैं, यमपुरी जा रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा, उनको लगता है कि हमारे साथ नहीं हो गए, उनके साथ हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की कि जब हम भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं तो समस्या वहीं से प्रारंभ होती है, वहीं से सारी समस्या प्रारंभ होती है। एक आप छोटी सी घटना बताते हैं, एक बार एक व्यक्ति उसकी दीक्षा हो जाती है और गुरु शिष्य को कहते हैं कि आप तो मैं
आपसे परीक्षा लगा था। बोलो, बोलिए गुरुदेव क्या परीक्षा है? उन्हें कहा आप पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, और पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर बैठ के जब करो, वहां मचान डालो, बहुत बड़ा वट वृक्ष था जंगल के बीच में, जंगल के बीचों बीच झारखंड का जंगल, जंगल के बीचों बीच आप जाइए और वहां से वट वृक्ष के ऊपर बैठ जाओ, मचान बना के वहां बैठ के जब करो। मुझे यही क्या आ गया? अरे ठीक है, आपकी आ गया है तो मैं प्रयास करता हूं, और जब तक मैं ना गाऊं तब तक नीचे ना उतरना। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ा गया, चढ़ गया, वो मचान बना लिया, खूब बैठ के जप कर रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, महामंत्र का जप कर रहा, हरि नाम ले रहा खूब। लेकिन फिर उसने भी निर्जल वर्त तो रखा नहीं था, निर्जल एकादशी था, तो परीक्षा थी गुरु ने लिए परीक्षा, और पेड़ के ऊपर बैठ गया। तो क्या हुआ कि परीक्षा ये थी, ये बताना चाहते गुरु कि शिष्य को ये विश्वास नहीं हो रहा था दीक्षा लेने के बावजूद भी कि हरिनाम में सब सारी शक्ति है, जो हरिनाम आप ले रहे हैं ये हरिनाम आप सबको सब कुछ देगा। इसका अर्थ ये कि हम लोग कुछ ना करें, इसका अर्थ यह है कि हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास पूरा हो रहा कि भगवान के पवित्र नाम होते हैं। तो वो शिष्य जब कर रहा था, भूख लग रही थी, लगभग सूर्यास्त हो गया, भूख उसकी बढ़ गई, पानी से नहीं पिया था सुबह से, और जंगली जानवर आवाज कर रहे हैं, शेर की धारा की आवाज आ रही है, तो उसकी हालत खराब हुई। तो फिर क्या हुआ कि घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है, गांव में डाकुओं ने डकैती की थी और गांव से काफी धन लूटा, और धन लूटकर वो डाकू जो है वो भाग भाग के आए, और पीछे जो है फिर पहले तो आए और वहां पे उन्होंने कहा ओहो हम बहुत थक गए हैं, काफी खाने पीने का सामान हमारे पास है, यही पे हम जो है भोजन बनाएंगे और खाएंगे। और सारा व्यंजन उन्होंने बनाया, लगभग 56 आइटम बनाए, उनके बाद से कुछ भी थे चूल्हे की व्यवस्था जी सब कुछ सामने पर, तो बहुत अच्छे अच्छे आइटम बनाए, लगभग 56 आइटम बन गए। और जब तैयार हो गया आइटम, सारे 56 आइटम तैयार हो गए, पीछे से जो है एक आवाज सुनाई दी थी घोड़ों की, तो राजा के सैनिक आ रहे हैं, भागो भागो, वो डर के सब भागे, सब भागे भागे भागे, पीछे से घोड़े आए और सैनिकों ने देखा ये क्या है, ये तो खाने पीने की चीजें हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो खाने का समय नहीं है, चलो तो हम आगे निकल जाए। तो डाकू भी पीछे पीछे भागे, तो आगे डाकू और पीछे सैनिक, सब लोग आगे निकल गए। उसके बाद गुरुदेव आ गए, गुरुदेव ने कहा कि नीचे आ जाओ, देखो क्या है, तो बहुत सारा भोजन है, 56 भोग हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा अब इसको लेकर हम लोग गांव वालों के पास जाए, पहले तो बुलाएंगे तब तो हम ले जा नहीं सकते खुद, तो गांव वालों को बुलाया, तो गांव वाले लेकर वहाँ पहुँचे, गांव में पहुँचे, उन्होंने कहा कि भोग लाओ ठाकुर जी को, सब प्रसाद बन गया, 56 भोग लग गया जगन्नाथ जी को, प्रसाद बन गया। गुरुदेव ने कहा कि अब इसको पूरे जगन्नाथ जी में प्रसाद जो है पूरे गाँव में बांटे, और आप यहाँ रहो गांव में, यहाँ प्रचार करना, यहाँ सबको भक्त बनाओ। तो उसको समझ में आया वो ही बात, ये गुरु मुझे शिक्षा देना चाह रहे थे। मैं कि अस्थाई अवस्था में था, अस्थाई अवस्था में रहकर मैंने हरि नाम लिया और भगवान को मैंने पुकारा, गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, अब मुझे पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास हो गया है कि हरि नाम में सब कुछ है। तो इस प्रकार जो है मतलब हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि जब तक हम पूरी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास हमारा होता है और भगवान की सेवा में व्रत रखते हैं, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं है, सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों में को जो वास्तव में भगवान की सेवा में लगना नहीं चाहते हैं, या फिर भगवान की सेवा में आपको लगने नहीं देते हैं, है कि नहीं। अर्जुन की भावनाएं बड़ी अच्छी लगती है देखने में, जैसे अर्जुन कह रहे हैं प्रथम अध्याय में क्या मैं सब कुछ उनको दे देना चाहिए, क्यों बेकार में हम लोग करें, है ना, ये सब क्या हो रहा है, मैं चले आता हूँ छोड़ के। लेकिन भगवान जो है बात की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि आपकी प्रशंसा करेंगे, आप भूमि छोड़ के जाओगे, है ना, ये सब आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे डरपोक है, छोड़ के चला गया, कोई आके प्रशंसा नहीं करेगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बोले। तो ये पूरा जो है हमारे शास्त्र है, इसका मूल देश ये होता है, ये समझना कि हमें अपने इंद्रियों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, इन सब को भगवान की सेवा में लगाना, तभी हमारा जो समाज है, हमारा देश सफल हो। ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदयः तत् सत्स्वत् सिद्धलम्। ईशोपनिषद का श्लोक है, इसका अर्थ ये है कि भगवान जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, चर और अचर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है सृष्टि में, वो सब कुछ जो है भगवान का। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदयः तत् सत्स्वत्। प्रभुपाद जी बहुत सरल उदाहरण दे रहे हैं उसका समझाने के लिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता का मतलब जो छोड़ दिया गया हमारे लिए उचित रूप में, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जो हमारे कोटे में है, कोटा होता है ना, जैसे कोटा हमारे लिए जो है रखा गया है, उसी को हमें स्वीकार करना है। तेल देखते रहे भूल, जैसे प्रभुपाद थोड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे भोग लगाते हैं, जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद हमें जो प्राप्त होता है क्या, प्रसाद। तो हमारे कोटे में जितना प्रसाद लिखा है, उतना प्रसाद ग्रहण करके हमें संतुष्ट होना चाहिए। तो कहने का है कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जाए, और बदले में भगवान जो हमें दे दे, उसको हमें बड़े संतुष्टि से उसको स्वीकार करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, तभी हम प्रसन्न हो पाए, तभी हम संतुष्ट हो पाए। नहीं तो हम सोचेंगे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो फिर उसकी कोई खुश का कोई अंतर नहीं। दूसरा जैसे हमने बताया कि भक्तों की सेवा, तो इसलिए भक्त कैसे भी हो, हम हमेशा भक्तों के साथ रहना चाहिए। और जो भक्त नहीं है वो कितने भी अच्छे दिखते हो, उनका साथ देने का कोई लाभ नहीं है, उनका कोई लाभ नहीं है। देखिए, या तो फिर हमें भक्तों को सहन करें, या फिर माया को सहन करें, आपके पास कोई ऑप्शन, बताइए क्या करना चाहते हैं। माया को जब सहन करेंगे आप, तो जीवन के अंत काल में माया आपको माया का ही स्मरण कराएगी। जैसे एक परिवार में क्या हुआ कि वो जब शरीर छोड़ रहा था एक गुरु व्यक्ति, क्योंकि उसने अभी धन जो है अपने बच्चों को ठीक से बांटा नहीं था, और कई जो लॉकर की चाबियां उनके पास थी, और तो लग उन्होंने कुछ साइन नहीं, कोई भी साइन नहीं किया था, तो सब जो है चिंतित हो गए, घर वाले परिवार के सारे सदस्य जो हैं, बच्चे सारे चिंतित हो गए। शरीर छोड़ने से पहले ये अगर नहीं फिर साइन करके गए, और अगर चाबियाँ नहीं दी, और ये नहीं बताया कहाँ पे असली अकाउंट है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो ऐसा करें, कब ऐसा करें। उनको इतनी चिंता नहीं थी कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं, उनको ये ज़्यादा चिंता थी कि हमारे नाम पे क्या लिखे जा रहे हैं, और कितनी प्रॉपर्टी हमारे नाम लिखे जा रहे हैं, किस लड़के को क्या मिलेगा, किस बच्चे को क्या मिलेगा, उसकी चिंता हो गई। तो ये इसको कहते हैं माया को सहन करने का परिणाम। माया को सहन किया पूरे जीवन भर, लोग यही कहते हैं हमें माया से डर नहीं है, हम तो लड़ेंगे, हम वीर हैं, आप डरपोक हो, आप बच्चे भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो आप, लेकिन देखा जाए तो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, वही वास्तव में एस्केप कर रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि आप सब एस्केपिस्ट हैं, समाज से दूर भाग रहे हैं, आप अभी स्वाम में जाने लगे हैं, भगवान की सेवा करने लगे हैं, आप सब जो है एस्केप कर रहे हैं, एस्केपिस्ट हैं आप लोग। लेकिन आप उनको बताना चाहिए कि एक्चुअली एस्केपिस्ट तो आप हैं, क्योंकि आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे। जेल में जो बैठा है वो एस्केपिस्ट है, या जेल में जो नहीं बैठा है वो एस्केपिस्ट है, बताइए। जेल में जो बैठा वही एस्केपिस्ट है ना, तो आप सब जेल में हैं, जनक मृत्यु जराव्याधि के जेल में बंद है, तो आप सब ने जो है सब आप देश में पृथ्वी में रहते हुए कुछ गलत कार्य किए, इसलिए जेल में बंद। भगवान के राज्य में रहते हुए आपने गलत कार्य किए, इसलिए आपको जेल में डाला गया है, तो आप सब एस्केपिस्ट है, आप सब बच्चे भागे हैं। तो इस तरह से इसको हमें समझने का प्रयास करना है कि भगवान की सेवा में जब तक हम लगेंगे तभी हम लोग प्रसन्न रह पाएंगे, अन्यथा नहीं रह पाएंगे कितना भी हम प्रयास करें। तो भक्त कैसे भी हो उन्हें हमें सहन करना चाहिए, क्योंकि भक्त क्या करते हैं, जीवन के अंत काल में भक्त जो है आपको भगवान का स्मरण कराते हैं, उनको सहन करने का यह परिणाम होता है। हम बोले ओ ये भक्त ने मेरी बुराई कर दी, ये भक्त जो है मुझे डांट रहा है, भक्त ने मुझे ये कह दिया है, ये क्योंकि मुझे सीनियर है मुझे डांटते रहते हैं, तो अगर आपने सहन कर लिया, एक बड़ा अच्छा बताया था किसी ने, हमने सुना था किसी वरिष्ठ वैष्णव से, अगर आप वैष्णव बनना चाहते हैं तो वैष्णव की डांट खाने के लिए तैयार हो। अगर ऐसा आप कर पाए पूरे जीवन भर, अब वैष्णव को आप सहन कर पाए तो निश्चित रूप से आप वैष्णव बनेंगे। और परिणाम क्या होगा जीवन के अंत काल में, यही भक्त जो है आप देखेंगे, वो सारे भक्त जो आपकी बुराई करते थे या जो भी कहते थे, आप बुरा बुरा कहते थे, वो सारे भक्त जो है आपके पास आएंगे और आपको राधा कुंड का जल देंगे, आपके समक्ष बैठकर आपके समक्ष कीर्तन करेंगे, आपके मुंह में जो है भगवान का चरणामृत देंगे, आपके माथे पर तुलसी लगाएंगे, जीवन के अंत काल में आपको भगवान का स्मरण कराने का पूरा प्रयास किया जाए। ये होता है भक्तों को सहन करने का परिणाम। तो हमें फैसला करना है कि हमें भक्तों को सहन करना है या फिर माया को सहन, उसी हमारे सफलता है। इसलिए भक्तों को सहन करना ही अच्छा है। वास्तव में देखा जाए तो भक्तों को सहन करना ये तो केवल मन की बात है, सहन क्या करना है आपको, उसके बाद फीस प्रसाद है। सहन भी कर लिया तो आपको परिणाम का सहन होता, सहन करने के बाद फीस प्रसाद मिलेगा, सहन करने के बाद आप संकीर्तन में होंगे, सहन करने के बाद रथ यात्रा में जाएंगे, सहन करने के कितने सारे फायदे, यहीं पर आपको इसका परिणाम मिले। मृत्यु के समय तो दूर की बात होगी, आप हो सकता है नजदीक भी हो, लेकिन जब तक है आप देखिए, सहन अगर करते हैं तो उसका परिणाम भी बड़ा अच्छा होगा। भगवान का रोज दर्शन करते हैं, सहन करते हैं, 4:30 बजे उठते ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं, 4:30 बजे गंगा जी का दर्शन करते हैं, तो सहन करने का परिणाम बड़ा अच्छा है प्रत्येक। और इस तरह से जितना हमें कष्ट आता है, वास्तव में हमें कष्ट आना जरूरी है। हम सोचते हमारे भक्ति हम कर रहे हैं हमें कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, तो कष्ट आना बहुत जरूरी है हम सबके जीवन में। कष्ट जब आएगा तो हम और भगवान के नजदीक जाएंगे, भगवान से और हृदय से प्रार्थना करें, जैसे पांडवों ने प्रार्थना की हमेशा कृष्ण के साथ, कृष्ण भगवान ने हमेशा उनका साथ दिया कि पांडव भी हमेशा प्रार्थना कर रहे थे। तो इस तरह से कष्ट आएंगे, कई प्रकार की समस्याएं आएंगी, कई प्रकार की उलझने आएंगी, लेकिन हम लोग अगर भक्ति में लगे रहें तो फिर इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। हमें ये देखना है कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है, गुरु की प्रसन्नता किसमें है, भक्तों की प्रसन्नता किसमें है, उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। जैसे आज गुरुद्वारा में मंदिर बनाना है, तो मंदिर बनाने के लिए जगन्नाथ जी का मंदिर या जो भी जिसका भी होगा मंदिर, उनके लिए मंदिर बनाया जा रहा है या उनकी प्रसन्नता के लिए बनाया जा रहा है कि नहीं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें अपनी प्रसन्नता को त्यागना होगा। ये समझ लीजिए आप, मेरे और आपस में मतभेद हो सकता है, मुझमें और इनमें मतभेद हो सकता है कि नहीं, लेकिन मुझे और जगन्नाथ जी में तो मतभेद होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अपने मतभेद के कारण हम भगवान की सेवा को ना त्यागें। जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए कोई भी अगर हमारा अंदर क्या कहते हैं आपस में मतभेद हो, उसको त्याग कर जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। इसी को ही शुद्ध भक्ति कहते हैं, किसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं, क्योंकि जब सेंटर कृष्ण है। महाभारत का युद्ध जो है, कई लोग बोलते हैं महाभारत में तो पॉलिटिक्स था, बहुत प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ पॉलिटिक्स जरूर था, लेकिन पॉलिटिक्स सेंटर कृष्ण थे, है कि नहीं, इसलिए महाभारत भी लोग पढ़ते हैं क्योंकि उनके सेंटर वाले, अगर महाभारत से आप कृष्ण को हटा देंगे तब तो 100% पॉलिटिक्स है, क्योंकि महाभारत के केंद्र में कृष्ण है, इसलिए महाभारत जो पढ़कर बड़ा आनंद आता है लोगों को। तो इसलिए जहां भी कृष्ण होंगे वहां पर सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, क्योंकि वही हमारे सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज हैं। इसलिए हमें देखना है कि हमारे जितने भी कार्य हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं भक्तों के संग में रहकर, ये सोच के करना है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, इसी में ही जो है हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान ने नाम का अवतार लिया, भारत में नहीं पूरे विश्व भर में पहुंच गए कृष्ण, और सबका श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार तो कोई ऐसा नहीं कि बाहर से तो श्रृंगार हो, श्रृंगार भीतर से होना चाहिए ना, दूषित चेतना का श्रृंगार होना है और वो केवल हरिनाम के द्वारा ही है कि नहीं। फिर आपको उतने लेवल का असुर भी तो बना, आप बोलेंगे नहीं भगवान स्वयं क्यों नहीं आ रहे हैं, हम उनका स्वरूप क्यों नहीं देख पा रहे हैं, हम उस ऐसे अवतार की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर आपको हृदय विष्णु जैसा राक्षस बनना पड़ेगा, वो आप बन नहीं सकते। बन सकते हैं तो हृदय विष्णु के बारे में पढ़िए भागवत में, पता चल जाएगा हम नहीं बन सकते। हिरण्यकश्यप आते एक ही दिन व्रत किए थे, है कि नहीं? लेकिन हिरण्यकश्यप ने 36,000 साल एड़ी के बल खड़े होके, हाथ ऊपर खड़े करके, अंगूठे पर, एड़ी वाला वो अंगूठा, अंगूठे के बल पर और हाथ ऊपर खड़ा करके ऊपर देखते हुए 36,000 साल निर्जल व्रत रखा था। एक दिन निर्जल एकादशी नहीं है, हिरण्यकश्यप साधन राक्षस नहीं थे, वो तो वैकुंठ आए हुए द्वारपाल से भगवान के जय विजय हिरण्यकश्यप रहने आए, तो वही लोग ऐसा कर सकते हैं भगवान उनका अभिषेक भी करने के लिए। तो ये दिखाने के लिए कि आप इतने बड़े से बड़े राक्षस बन जाओ ये सोचते हुए कि पूरी सृष्टि मेरी प्रसन्नता के लिए है, लेकिन अंततः जो है भगवान ने साबित किया कि ऐसा नहीं है, गलत है आपकी रहे। तो या तो ऐसा राक्षस बने या फिर अच्छा हुआ छोटे मोटे भक्त बन जाए, ज्यादा अच्छा है। छोटा भट प्रभुपाद जी मिनी रावण बहुत सारे हैं आज के समय, मिनी रावण, तो मिनी रावण बनने से प्रभुपाद कहते कोई फायदा नहीं। और तो आप सब प्राप्त है कि हरिनाम महामंत्र के जप को बड़ी गंभीरता से लीजिए। देखिए हमारे पास कई सेवाएं हैं, कई प्रकार की सेवाएं हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि ऑल द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र इज मोस्ट एसेंशियल, यानी महामंत्र का जप करना ध्यानपूर्वक ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे जब बोला जाता है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंगता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हरिनाम दे रहे हो तो और कोई कार्य नहीं हो सकता, केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम। तो जितना आप ध्यानपूर्वक जप करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा हरिनाम, ये सोचते हुए कि हरिनाम जो ले रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये सोचते हम हरिनाम ले रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अवतार नहीं हुआ है, लेकिन रोज हमारे जीवन में अवतार तो होता ही है, और उसकी अनुभूति हम नहीं कर पा रहे वो हमारी समस्या है ना। तो रोज जब हरिनाम ले तो सोच लीजिए कि कृष्ण अवतरित हो चुके जीवन में, अब साधना धर्म संसार संभव आदि योगी हो गए, तो तैयार हो जाइए फिर आप संघार शुरू होने वाला है। लेकिन तो संघार तभी करेंगे कृष्ण जीवा में आके जब हम ध्यान पूर्वक ध्यान देंगे उनको, आइए आपका स्वागत है, अब आप कहीं ध्यान करेंगे और किसी का नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बड़े ध्यान पूर्वक शब्द ध्वनि मैं अपना लगाते हुए ध्यान लगाते हुए साउंड वाइब्रेशन में ध्यान लगाते हुए बड़े ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप का उच्चारण करें, आदि ये बहुत लाभ मिलेगा। ठीक हरे कृष्ण जय जान राम होते फिर भोपाल की जय तो भक्त वृंद की जय गोप्रेमंदे।